أقول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. ولعنة الله على أعدائه وأعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. صدق الله العظيم. مؤمنين، سورة اعراف سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیت پڑھنے کا شوق حاصل کرا ہے، 127 آیت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنا موزہ لے کے فرعون کے پاس گئے اور وہاں ان کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے بعد جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور اب سلسلہ وہاں سے آگے جاری و ساری ہے. تو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ترک کر دیں؟ فرعون نے جواب دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غلبہ حاصل کیے ہیں. تو جب یہ ہو گیا اور جادوگر ساتھ ہو گئے اور فرعون کی بےعزتی ہو گئی، تو سرداروں کو غصہ آیا. اور سرداروں جب، کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو رہی تھی نا دربار میں، اور جادوگر ساتھ ہو گئے، تو بڑا غصہ آیا سرداروں کو. تو فرعون کو اور غصہ دلانے لگے، کیا وہ کہنے لگے، کیا تم موسیٰ ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا جبکہ زمین میں وہ نا فساد کر رہے ہیں، اور اوپر سے تمہارے معبودوں کو بھی کو بھی نہیں مانتے؟ مطلب کہ کہا کہ تم اب ان کو ختم کر دو. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو پورا ختم کر دو، کیونکہ انہوں نے اب اس طرح سے زمین میں فساد کرا ہے اور تمہارے معبودوں کو بھی نہیں مانتے. تو جب انہوں نے کہا کہ معبودوں کو بھی نہیں مانتے، تو فرعون کو غصہ دلا رہے تھے تاکہ پورے بنی اسرائیل ختم ہو جائے. تو فرعون نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، مطلب اس کا کہنے مطلب یہ تھا کہ ہم سب کو قتل نہیں کریں گے، لیکن ہماری پوری پرانی جو روش ہے اس کو ہم اختیار کرے رکھیں گے. پرانی روش کیا تھی؟ کہ بیٹوں کو ذبح کر دیں گے اور بیٹی کو زندہ چھوڑیں گے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اور ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، ہم کو غلبہ ہے اور ہم کو ضرورت نہیں کہ سب کو قتل کر دیں. قال موسیٰ لقومی استعین باللہ واصبر ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. تو جب اتنے مشکلات آ رہی تھی اور یہ سب ہو رہا تھا، اتنے ہنگامے ہو رہے تھے، تو اس کے بعد کی جو آیت اس طریقے سے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام بخیر تو متقین کے لیے ہے. کیونکہ جب اتنی مصیبت آ رہی تھی، فرعون کہہ رہا تھا کہ ہم قتل کریں گے، سزا کہہ رہے تھے سب کو ختم کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ کیا بہترین بات کہی جو آج بھی ہمارے لیے بھی حق ہے، یہ حق ہمیشہ کے لیے رہا ہے، کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کوئی بھی حالات ہو، اللہ کی طرف توجہ کریں، اہل بیت کا وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مدد مانگو اور صبر کریں. پھر کیا کہا انہوں نے کہ زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا وہ وارث بناتا ہے، زمین اللہ کی ہے. اور کیا کہا کہ انجام خیر متقین کے لیے. یہ چیزیں بیسک پرنسپلس ہیں یہ، جو کہ आदम से क़यामत तक के लिए यही प्रिंसिपल है ज़मीन के, कि ज़मीन अल्लाह की है, इसको चाहता बारिश बनाता है और अंजाम खैर मुत्तकीन के लिए है, अंजाम खैर मुत्तकीन के लिए। उनके साथ हुआ ऐसा ना, बाद में अल्लाह ने करके दिखाया कि उनको बारिश बना दिया, मालूम अपने को। लेकिन उस वक्त की बात है जब ये जब जीत नहीं हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की, उनके साथी उससे पहले बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के जो अंजाम खैर मुत्तकीन के लिए है, जो भी इस दुनिया में फसाद करता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। इस बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये यूनिवर्स परफेक्शन की तरफ जा रहा है और जो भी इनपरफेक्ट चीज़ें उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो यही कि अगर आप परफेक्शन को जा रहे हो, आप तक्वा इख्तियार कर रहे हो, तो आपको गलबा है, सब्र करे इंसान, अल्लाह से मदद मांगे और ज़मीन अल्लाह की है। अब यही चीज़ इमाम अज़मा के लिए भी है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमको चाहिए हम अल्लाह से मदद मांगे, सब्र करें, मौला का ज़ोर होगा इंशाल्लाह। और जो सुन्नत पुरानी है वही सुन्नत फिर से अमल होगा और फिर हुकूमत इस ज़मीन पर मुत्तकीन की है, क्योंकि इमाम अज़मा के उसका वसीला होंगे, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन हमको इस वक्त चाहिए कि हम सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا على أسار ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظروا كيف تعلمون। तो जब उन्होंने ये कहा उनका जवाब क्या था, उन्होंने कहा आपसे पहले भी हमने तकलीफें उठाई हैं और आपके तशरीफ लाने के बाद भी हमें सताया जा रहा है। मूसा ने जवाब दिया वो वक्त करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर दे और तुम्हें ज़मीन में उसका जानशीन बना दे और देखेंगे तुम कैसे अमल करते हो। तो उन्होंने कहा हम तो हमेशा ही मुश्किल में रहे, आप नहीं आए थे तब भी बहुत तकारीफ थी, बच्चों को कत्ल हो रहा था और तमाम जितनी भी थी गज़ाएँ हो रही थी, और अब आप भी आए हैं तो वो सिलसिला जारी और सारी है अभी भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, देखें ये जवाब हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी जवाब है कि हमारी शियों पे और मुसलमानों पे सब पे तकालीफ चल रही है, तकालीफ हर तरफ तकालीफ है, पूरे मुसलमानों पर तकालीफ है और शियों पर ख़ासतौर से और तकालीफ है क्योंकि मौला अली की विलायत मानते हैं। तो ये पैगाम हमारे लिए भी है। तो जवाब क्या दिया उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम कि वो वक्त करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे, हमारे जो दुश्मन है इंशाल्लाह ये भी हलाक होने वाले हैं सब, और तुम्हें ज़मीन में उसके बाद जानशीन बना दे, क्योंकि इंशाल्लाह इमाम आएंगे और मोमिनीन की हुकूमत होगी, फिर देखे तुम कैसे अमल करते हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखेंगे तुम कैसे अमल करते हो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे होंगे तो क्या सोच रहे हो बनी इसराइल कि मूसा कैसी बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर कैदी हैं और ये सब हालात इतने ख़राब हैं, हमको कैसे हुकूमत मिलेगी। लेकिन वाकई ऐसा हो गया ना, वो ना उनके साथ, और उन्होंने फिर क्या करा, उनके अमल बद हो गए, वो ना हुआ। तो ये है कि हमको चाहिए कि हमारे हाथ में जो हम करें हम तक्वा अख्तियार करें और अल्लाह से मदद मांगें और मौला को पुकारें और फिर उसके बाद ये दुआ हो के हमारी आने वाली सारी पुश्तें इताअत गुज़ार हों अल्लाह की। क्योंकि क्या है कि इनके साथ ये हुआ था कि जब इख्तदार में आ गए थे तो फिर नाफरमानी करने लगे थे, इसलिए क्या है कि अल्लाह हर एक को का इम्तहान लेता है, दे के भी लेता है इम्तहान और ले के भी इम्तहान लेता है। बनी इसराइल का इम्तहान जब भी था जब वो कैदी थे, बनी इसराइल का इम्तहान फिर बाद में हुआ जबकि वो इख्तदार में आ गए। वो लखत أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون اور ہم نے آل فرعون کو کئی سال کی قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر کے رکھا تاکہ انہیں سبق ملے۔ تو جب یہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور لوگ دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام کے جانے لگے تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، جو بھی معلوم پڑتا تھا کہ مومن ہو گیا اسے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب دینا شروع کرا فرعونیوں کو، پہلا کیا عذاب تھا، قحط تھا، ठहर कर क्या कि कई साल पहर पड़ता था, उन पर मुसीबतें आती थी और उसमें उनको मुश्किल आती थी, ताकि वो अल्लाह ने वो अजाब इसलिए भेजा था पहर का जो कि बार बार आया और गया, वो इसलिए था कि ताकि वो अल्लाह के रुजू करें, ताकि अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो। फ़ैदा जात हम हसन तो आलू लना आदि वन तुसिब हम सैया तो तैयर बिमूसा बम्माओ अला इन्नमा ताएरु हम इंदल्ला ही वला किन्न अक्तर हम ला यालमून। जब उन पर अच्छा जमाना आता तो कहते कि हम इसके हकदार हैं, और जब बुरा जमाना आता तो ये नहूसर मूसर उनके साथियों की वजह से ऐसा कहते हैं। हालांकि हकीकत में उनकी नहूसर अल्लाह के पास है, लेकिन उनकी अक्सरियत इस बात से बेखबर है। तो क्या हुआ, जब खुशहाली के साल आते, जब बारिश होती है ना, तो कहते हैं कि ये हमारी वजह से कि हम इसके मुस्तहक हैं, और जब कहर पड़ता तो क्या कहते हैं कि ये जो बदशगुनी है, ये कि नहूसत है, ये मूसा के उनके साथी की वजह से ऐसा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये नहूसत अल्लाह के पास उनकी है, लेकिन उसको अक्सर उस बात से बेखबर है। तो इसमें मीज़ा ने बड़े नुक्ते निकाले हैं। तो क्या कहा पहले मीज़ा ने कि फ़ैदा जा अथुम, कि जब उनके पास अच्छा ज़माना आता, और जब बुरे ज़माने के लिए क्या कहा, वह इन तुसिब हों, और जब मुसीबत पड़ती। तो मीज़ा ने कहा कि जब इज़ा जा, मतलब ये कि वो जो चीज़ हमेशा आती रही है। तो मीज़ान का कहना ये है कि फ़िरौनी को अल्लाह ने शुरू से ऐश और इशरत भी रखा था, तो समझते थे कि वो उसके मुस्तहिक है ना। तो जब इसीलिए कहा गया कि फ़ैदा जात, जब आती खुशहाली, मतलब कि जो चीज़ हमेशा आती रही है, उसको क्या कहा वो कि जो आती है, जो हमेशा आती रही है, फिर क्या कहा कि और जब मुसीबत, लेकिन जब मुसीबत पड़ती तो उनके पास मुसीबत कम पड़ती थी, इसीलिए वो कहते थे कि ये खुशहाली हमारी वजह से, हम तो हैं लकी लोग, ये तो अभी मूसा के साथ ही आए, इसलिए हमारी बदशुक्री शुरू हो गई है। अच्छा, जो लफ्ज़ जो आया कि तैयर, जो लफ्ज़ आया वो बना तायर से। तायर क्या है, उस जमाने में अरबों में माना जाता था कि जैसे कि कौवा हुआ, तो वो बदशुक्री है, तो वो बदशुक्री के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तायर से, या तैयर, मतलब उनकी बदशुक्री थी मूसा और उनके साथियों की। अच्छा, दूसरा बहुत नुकता होने का लगा है कि जब जात मुल हसना, तो हसना के आगे अलीफ लाम लगा, मतलब के दी, मतलब खास खुशखबरी, मतलब ये खुशखबरी हमेशा आती थी। वो सैयाद के आगे कुछ अलीफ लाम नहीं लगा, मतलब इसका मतलब कि वो ख़ास चीज़ नहीं थी, मतलब कि वो इतनी आम नहीं थी। तो ये नुक्ते हैं जो मैं आपको बयान करता हूँ मीज़ा ने क्या कहा। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये जो बदशुगनी है उनकी अल्लाह के पास है, लेकिन उसमें अक्सर नहीं जानते। मतलब क्या हुआ कि ये जिन्होंने जो इन्होंने अपने गुनाह कमाए ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी कर करके, फिर उन्होंने कहा कि इसका अज़ाब अल्लाह के पास तैयार है, और ये जो कहते हैं ये सब झूठ है, लेकिन ये लोग उस बात को जानते नहीं, क्योंकि वो खुद पसंद है। वो कालू महमा तत्तीना भी आया थी तस्हरुना भी हा फमान हनु लका भी मुमिनी फ अरसलना अलेहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वल दफा दिया वल दम वल आयाति मुफस्सिलात अस्तकबरू व कानू कोमन मुजरिमी। उन्होंने कहा वो आप हमें महसूल करने के लिए कोई भी निशानी लेके आए, हम फिर भी आप पर ईमान लाने वाले नहीं, यानी कि जब भी मूसा अलैहि सलाम निशानी लेके आते तो उसको समझते कि उन पर जादू किया गया है, मतलब हर निशानी को वो गलत लेते थे, सोचते कि हम पे जादू करा। कहा कि तो उन्होंने जब जिद में आ गए थे, अल्लाह ने उनके दिल बंद कर दिए थे, ताले लग गए थे। कहा कि आप कितनी निशानी ले आए लेकिन हम उसको जादू ही समझेंगे और हम ईमान लाने वाला नहीं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियाँ, जुए, मेंढक और खून कितनी ही वाजिब निशानियाँ भेजी मगर वो तकबर ही करते रहे और वो मुजरिम कौम थी। तो इसमें अरसलन तूफ़ान और ये जो कहा है आयातिम मुफस्सिला, मुफस्सिला का जो लफ्ज़ आया है तो मीज़ा ने कहा कि ये मतलब डिस्टिंक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ये अलग अलग निशानियाँ थी, एक साथ नहीं आई। कौन कौन सी निशानी है? पाँच, तूफान, टिड्डी, जुए और मेंढक, मेंढक और खून, ये जो निशानियाँ थी एक साथ नहीं आई थी, अलग अलग आई थी, लेकिन उन्होंने तकबर किया और लोग मुजरिम लोग थे। तो पहले तूफान आया, तूफान मतलब पानी बहुत आया, बारिश बहुत हुई, उससे बड़े हलाकत फैली। उसके बाद अल्लाह ताला ने टिड्डियाँ भेजी। तो जब भी कोई आता था अजाब तो वो आते थे मूसा अलैहि सलाम के पास, दुआ करें कि ये हट जाए तो हम ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को हम रिहा कर देंगे। तो पहले तूफान आया, उसमें नुकसान हुआ, फिर ये सब गए मूसा अलैहि सलाम के पास, फिर आनी क्या दुआ करें, उनकी दुआ करी तो अजाब टल गया। फिर टिड्डियाँ आई, टिड्डियाँ इस कदर आई थी कि पूरी खेतियाँ साफ हो गई थी, घर के दरवाजे, फर्नीचर सब खत्म हो गया, टिड्डियों ने ऐसा अजाब करा। फिर जाकर उन्होंने कहा कि दुआ करें मूसा अलैहि सलाम से। उसके बाद जुए आए, वो जुए ऐसी थी कि नाज में भी निकलती थी और कपड़ों में भी रहती थी, यहाँ तक कि पूरे आँखों में घुस जाती थी और ऐसा लगता था कि स्मॉल पॉक्स हो गया है, खुजा खुजा के, इतनी परेशानी थी, इतनी शदीद तकलीफ थी। उसके बाद मेंढक आए, मेंढक इस तरीके से आए कि पूरे घर में मेंढक, पानी पियो तो पानी में मेंढक, मुंह के अंदर घुस जाते थे मेंढक, सिर्फ वो अजाब फिरौनियों का आता था, बनी इसराइल को नहीं आता। अल्लाह ताला एक को जानता है मोमिन, कौन मोमिन है कौन काफिर है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको मोमिन रखे, हमको इमाम जमा के साथ रखे, उनके असहाबों में। उसके बाद खून की निशानी आई तो पूरी नील नदी खून बन गई थी। फिर फिरौनी जब पानी पीते थे तो पानी खून बन जाता था, सब्ज़ी खाते थे तो सब्ज़ी में से पानी निकलता था, वो खून बन जाता था, प्यासे हो गए थे। तो यहाँ तक ये जो मैं बता कल कर रहा हूँ, ये इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का कहना है, ये जो बयान कर रहा हूँ जो किस्से हो रहे हैं, ये पाँचवें और छठे मौला ने आपको बताए हैं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम ने और इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने किस तरीके से अजाब आए थे। तो फिर फिरौनी क्या करता था कि जब उसके हाथ में जब पानी खून बनता था तो वो बनी सही तरफ के जो लोगों की तरफ पानी उस खून को देता था तो वो खून फिर से पानी बन जाता था। तो वो चाहते थे कि वापिस से पानी लेके जल्दी पी लें, वो फिर खून बन जाता है। अल्लाह इतना सफल हुआ, इतना परेशान हुए, लेकिन फिर भी फिर वो कहते थे हम रिहा कर देंगे, तोबा करते थे। उसके बाद वो अपनी पुरानी हरकत पे आ जाते थे। मोमिनीन दिल अगर सख्त हो गया ना बहुत मुश्किल है, कुछ भी निशानी आ जाए इंसान बदलता नहीं है, दिलों का ताले नहीं पड़ना मुमनी। हमको चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करें, आखिरी ज़माना है, मौला कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं, इस्तग़फ़ार करें कि हमारे दिलों पे ताले नहीं पड़े। उनके ऐसे ताले पड़े थे कि जब भी निशानी आती थी तो उसको निशानी नहीं मानते थे, सहर मानते थे, जादू हो रहा। तो अल्लाह ताला ने आगे आया ने पूरे तफसील बयान करी है, वो लम्मा वका अलै रिजसु कालू या मूसा तऊ लना रब्बका बीमा अहिदना इंदका वला इन कशफना अन्ना रिजसा लनुमिनन लका वला नुरसिलन माका बनी इसराइल। और जब उन पर अजाब वाक़े हो गया तो कहने लगे ए मूसा आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें जैसा कि उसने आपसे अहद कर रखा है, और अगर आपसे आप हमसे अजाब को टाल देंगे तो हम आप पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आपके साथ रवाना कर देंगे। देखें कहा आपसे अल्लाह ने अहद ले रखा कि आपकी दुआ कबूल करेगा। मालूम था उनका दर्जा क्या था, सब मालूम था मोमिनीन। आज दुनिया में क्या अहले बैत का दर्जा नहीं मालूम है, अली की विलायत न मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद ये है कि उसके बाद भी दिल तंग है, दिल तंग है। आज एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों को ये मानता ही नहीं कि इमाम मेहदी गैब में है, कहते हैं पैदा होने वाले हैं। इस तरीके से उनका को झुटलाया जाता है। हमको चाहिए हमसे रजू करें कि इमाम ज़माने की तरफ रजू करें ताकि हमारे दिलों के ताले टूटें, और हम कुरान की तरफ रजू करें ताकि हमारा दिल पाक हो, ताकि हम वाकई मोमिन बने। देखिए आप इसमें जाके मूसा से कहते दुआ करें, मालूम हो कि हक़ है, हक़ है, इसलिए दुआ करवाते थे। फिर उनकी दुआ कबूल भी होती थी, फिर भी उनकी आँख नहीं खुलती थी। ये बड़ा फरेब है दुनिया में, मुश्किल है कि ईमान लाना और उस पर कायम रहना, भले ही कितनी निशानियां साफ देख रहे। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला हमको साबित कदम रखे। फलम्मा कशफना अनहुम रिजस इला अजलिन हुम बालिगू इदा हुम यनकिसून, बस जब हमने उनसे एक मुद्दत तक के लिए अजाब को हटा लिया जिस तक वो पहुँचने वाले थे तो वो आहद शिकनी करने लगे। जैसे अजाब हटता तो आहद शिकनी करने लगे। अल्लाह ताला ने कौम फिरौन को एक दिन में गर्क नहीं करा, इतनी निशानियाँ दी, इतनी बार मौका दिया, उसके बाद आखिरी में गर्क करा। देखिए आप अल्लाह ताला हमको भी बहुत मोहलत देता है, मोमिनीन इस मोहलत को अल्लाह की रजा में न समझ लें। इस मोहलत को अल्लाह जो ने जो मोहलत दी है उसमें इस्तग़फ़ार है और लगातार कोशिश है ईमान की बुलंदियों की तरफ जाने की। लगातार इस्तग़फ़ार है, लगातार दुरूद हमारी, लगातार हमारी कोशिश है कि हम ईमान लाएँ और ईमान पर के आला दर्जे की तरफ रुजू करें। फन तकमना मिनहुम फअकलना हम फिर यमी भी अनहुम का दुबू भी आयाती ना व कानून अनहा गाफिली। उसके बाद हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में डुबो दिया क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों को चुटलाया था और उनसे गाफिल हो गए थे। चुटलाया भी और गाफिल भी हो गए, इतनी वाज आयत है। उसके बाद भी चुटलाया उन्होंने क्योंकि तकबर बहुत था उनमें, तकबर इंसान को मार डालता है कि हम बेहतर है क्योंकि अल्लाह ने हमको दौलत दी है, हम पावर में हैं। झूठी चीज़ों की तरफ इंसान का तकबर होता है और हमेशा की जिंदगी को खो देता है। आज हमारी भी इस दुनिया में हमारी कितनी जिंदगी बची है और हम सब अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं आखिरत की तरफ, इसलिए हमको चाहिए हम बहुत होशियार रहें। और अल्लाह की जो जो निशानी हमको दिखती है, कौन सबसे बड़ी निशानी अल्लाह की कुरान की, कौन सी दूसरी बड़ी निशानी अलग है, इनको पकड़े रहें। ओ मौला के ज़हूर की तैयारी करें, दुआ करें मौला आप आ जाए। वह औरसनल ओमलदीना कानू यस तफ़ून मशारिकल अर्दी व मगारिब बिहल्लती बारक नाफिया व तम मत कल मतुरबी कल हसन अला बनी इसराइल बिमा फ़बरु व दम्बर ना माँ काना यसन ओ फिरऔन व कौम व मकानू यारिशून। वो जिन लोगों को कमज़ोर बना दिया गया था उस कौम को हमने ज़मीन का मशारिक और मगारिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बाबरकत बनाया था, और बनी इसराइल के बारे में उनके सबर की वजह से आपके रब का वादा नेक पूरा हुआ। फिरऔन और उसकी कौम जो बुलंद बाला इमारात और बागात बनाया करते थे उन्हें हमने तबाह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि फिर जो लोग ज़मीन में कमज़ोर हो गए थे बनी इसराइल, तो उस ज़मीन पे जहाँ अल्लाह ने बरकतें रखी थी यानी फिलिस्तीन की ज़मीन पे मशारिक व मगारिब, पूरी हुकूमत अल्लाह ने उनको दे दी, वारिस बना दिया, जो कि अल्लाह का वादा था तो अल्लाह ने पूरा करा, वादा बना दिया। और बनी इसराइल को उनके सब्र की वजह से, सब्र उन्होंने जो करा था, आज हमको चाहिए उन्हें सब्र करें। अभी मौला में सब्र कर लेंगे, सब्र ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इसको सब्र नहीं कहते। सब्र ये कि कायम रहे, कायम रहे, सफर से मुराद नहीं कि मतलब पैसे होकर बैठ गए, कायम रहे और मौला के लिए जद्दोजहद करें, कम्युनिटी को बिल्ड करें, घर को बिल्ड करें, हाँ तैयारी करें, तकवा अख्तियार करें, क्योंकि अंजाम खैर तो मुत्तकीन के लिए तकवा अख्तियार करें। और अब उसके बाद अल्लाह का वादा जो है कि आखिरी मतलब कि आखिरी में मोमिनीन इस ज़मीन के वारिस होंगे, जो कि अल्लाह की सुन्नत चली आ रही है, वो होने वाला है। लेकिन इस वक्त हमारी आजमाइश है इस वक्त के हम कितने मुत्तकी हैं। और अल्लाह ने कहा कि फिरौन उसके कौम जो बुलंद बाला इमारत बनाया करते थे, मतलब इसमें जो लाया यसनाउ बल्कि किसी को बनाना, कौमहू मकानू यारिशून जो बुलंद चीज़ें बनाया करते थे, यानी कि ऊँची चीज छत के महलात और बागात जो जाते हैं ऊपर छतरियों तक, उन सब को अल्लाह ने नेस्त नाबूद कर दिया। आज की जो दुश्मन है अल्लाह के, ये क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स बना रहे हैं, तो क्या ये लोग कोई जीतने वाले हैं क्या? जीत तो उसकी है, जीत तो उसकी है जो मुत्तकी है। मोमिनीन इस दुनिया के फरेब में हम ना आ जाएँ चमक दमक में कि इसकी ताकत वो है, उसकी ताकत वो है। ताकत सिर्फ अल्लाह की है और मदद अल्लाह की है, और हमको सब्र करना चाहिए। सब्र हम सीखते हैं अलबेस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। देखिए आप सब्र क्या था उनका, उनका सब्र ये था कि तीन दिन भूखे प्यास रहे, उसके बाद भी खुदा का शुक्र था और उनके जज्बात में बढ़ोतरी हो रही थी। मौला हुसैन कुर्बानी जो कुर्बानी दे रहे थे, और कहने वालों का कहना है कि चेहरे का नूर बालातर होता जा रहा था, क्योंकि वो हक़ुल यकीन की मंजिल पर थे। उनको मालूम था कि जो कर रहे हैं अल्लाह से राज़ी है। हमारी मुसीबत है कि हम जो कर रहे हैं हमको मालूम नहीं अल्लाह से राज़ी है, हमारे कामों में इतनी मिलावट है। उनमें इखलास, जिनमें इखलास होता है वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह से राज़ी, हमारी मिलावट अल्लाह दूर करे इमाम हुसैन के सदक़े में। और हमको यकीन दे कि हमारा रास्ता हक रास्ता है, और मदद जल्द आने वाली इमाम ज़मानी, हम तैयार हैं। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि व सल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।